दिन भर तारीख 23 दिसंबर दिन शुक्रवार, मैं हूं मोहन लाल शर्मा। जर्मनी में बर्लिन क्रिसमस बाजार ट्रक हमले के मुख्य संदिग्ध को इटली की पुलिस ने गोली मारी।
La persona uccisa è risultata essere dopo tutte le indagini che si fanno in questo caso.
100 से ज्यादा यात्री ले जा रहा लीबिया का विमान हाईजैक, महिलाओं और बच्चों को छोड़ा गया। विवेचना में आज याद करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री किसान नेता चौधरी चरण सिंह को।
इस सब के बावजूद के प्रधानमंत्री तक बने, कभी मैंने नहीं देखा कि किसी तरह का कोई लाव लश्कर उनके साथ हो। मामूली सी एम्बेसडर गाड़ी में चलते थे, जहाज से चलने के बहुत खिलाफ थे। प्रधानमंत्री रहने के बावजूद वो लखनऊ ट्रेन से जाना पसंद करते थे।
लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। जर्मनी के बर्लिन में लॉरी हमले के मुख्य संदिग्ध अनीस आमरी की इटली पुलिस के साथ मुठभेड़ में मौत हो गई है। बर्लिन के क्रिसमस बाजार में हमला बीते सोमवार को हुआ था, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस के मुताबिक आमरी की उंगलियों के निशान लॉरी से मिले निशान से मेल खाते हैं। इटली के गृह मंत्री के मुताबिक आमरी की पुलिस के साथ मुठभेड़ मिलान शहर में हुई थी। जर्मनी के जांच अधिकारियों के मुताबिक वो ये जानकारी करने की कोशिश में जुटे हैं कि क्या किसी ने आमरी को इटली जाने में मदद की थी। लीबिया के एक विमान को हाईजैक कर माल्टा की राजधानी वेलेत्ता ले जाया गया है। विमान में सवार रहे 65 लोगों को छोड़ दिया गया है, इनमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। ये जानकारी नहीं हो सकी है कि विमान हाईजैक करने वाले कितने लोग हैं। हालांकि माल्टा के अधिकारियों के मुताबिक उनका कहना है कि मांगे पूरी होने पर वो यात्रियों को जाने की इजाज़त दे देंगे। विमान में 100 से ज़्यादा यात्री सवार हैं। एक स्थानीय मेयर मागदा नाउदी ने बीबीसी को बताया,
About 10 minutes ago, the port door front has been opened.
करीब 10 मिनट पहले अगला दरवाज़ा खुला और 25 महिलाओं को उतारा गया। वहाँ एक कोच था, वो सब उसमें दाखिल हो गई। ये सब कुछ बहुत शांति के साथ हुआ। विमान के चारों ओर सेना और पुलिस हैं। एक पुरुष महिलाओं को रास्ता दिखा रहा था, लेकिन अब तक विमान से कोई पुरुष बाहर नहीं आया है। ये थे स्थानीय मेयर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि सीरिया को लेकर शांति वार्ता अगले साल होगी। इसमें सीरिया के राष्ट्रपति के अलावा ईरान, तुर्की और रूस भी हिस्सा लेंगे। अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने कहा कि सीरिया की सेना ने अलेप्पो को अपने अधिकार में ले लिया है। उन्होंने कहा इसके बाद पूरे देश में संघर्ष विराम लागू होना चाहिए, उसके बाद शांति वार्ता होगी। पुतिन ने यह भी कहा कि अमेरिका और सऊदी अरब का भी बातचीत में स्वागत किया जाएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उन्हें अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान में कोई अनोखी बात नहीं दिखती है, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि वो अमेरिकी परमाणु ताकत में इजाफा करना चाहते हैं। पुतिन ने कहा कि ट्रंप ने कोई अनोखी बात नहीं की है। उन्होंने कहा,
Что касается вновь избранного президента Соединенных Штатов, господина Трампа, то здесь нет никакой новизны.
जहां तक अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप की बात है, उन्होंने कुछ नया नहीं कहा है। अपने चुनाव के दौरान उन्होंने अमेरिका की परमाणु क्षमता और सेना को मजबूत करने की बात की थी। इस बात में कुछ भी नया और अनोखा नहीं है। ये थे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक यूरोप पहुंचने की कोशिश में भूमध्य सागर में इस साल डूबे प्रवासियों की संख्या 5,000 से ज़्यादा हो चुकी है। ये अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। प्रवासियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायोग के प्रवक्ता विलियम स्प्लेंडर ने कहा कि गुरुवार को इटली के तट पर डूबे लोगों के बाद ये संख्या 5,000 के पार हो गई है। उन्होंने कहा कि आशंका है कि कल भूमध्य सागर में डूबने से करीब 100 लोगों की मौत हुई। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज़ादी के आंदोलन पर रोक लगाने की कोशिश के लिए हांगकांग के नेता सी वाई लॉन्ग की तारीफ की है। शी जिनपिंग ने कहा कि हांगकांग के नेता ने हांगकांग की संप्रभुता, सुरक्षा और हितों की रक्षा की। उन्होंने हांगकांग के नेता के साथ बीजिंग में मुलाकात के पहले ये बयान दिया। हांगकांग में अगले साल चुनाव होने हैं और लॉन्ग ने इसमें हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि चीन हांगकांग की आज़ादी के खिलाफ संघर्ष जारी रखेगा। नाइजीरिया के कस्टम विभाग ने बुधवार को जो चावल जब्त किया था, उसे लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिनभर में आपका स्वागत। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। दिनभर कार्यक्रम की शुरुआत हम बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर से कर रहे हैं। बर्लिन के क्रिसमस बाजार में ट्रक से हमला करने वाले संदिग्ध ट्यूनिशियाई शरणार्थी अनीस आमरी को इटली की पुलिस ने मिलान शहर में गोली मार दी है। जर्मनी के संघीय अभियोजन अधिकारी ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि जांचकर्ता निर्धारित करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अनीस आमरी के साथ कोई और भी बर्लिन हमले में शामिल था या नहीं। संदिग्ध आमिर की मां ने अपने बेटे के मारे जाने पर कहा कि पुलिस बर्लिन हमले से पहले उसे 2 या 3 बार गिरफ्तार कर चुकी थी, उन्होंने इसे वापस ट्यूनिशिया क्यों नहीं भेजा, उसे सजा क्यों दी गई। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए विनीत खरे से।
इटली के गृहमंत्री माराको मिनित ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संदिग्ध हमलावर को तड़के गोली मारी गई।
La persona uccisa è risultata essere, dopo tutte le indagini che si fanno in questo caso, senza...
गृहमंत्री माराको कह रहे थे कि जिस व्यक्ति को मारा गया है, इस मामले में पूरी जांच प्रक्रिया के बाद ऐसा किया गया है। इसमें कोई शक ही नहीं है कि अनीस आमरी बर्लिन हमले का संदिग्ध था। इटली की पुलिस ने मिलान के सेस्टो सैन जियोवानी इलाके में पुलिस गश्त के दौरान संदिग्ध की पहचान की थी। गृहमंत्री माराको मिनित ने घटना का ब्यौरा देते हुए कहा,
Questa notte alle 3 del mattino a Sesto San Giovanni Milano nel corso di
ये सामान्य दिनों की तरह की पुलिस गतिविधि थी। गश्त के दौरान तड़के 3 बजे पुलिस ने मिलान के सेस्टो सैन जियोवानी इलाके में संदिग्ध को रोका। जैसे ही पुलिस ने उसे रोका, संदिग्ध ने अपनी बंदूक निकाल ली और उन पुलिस अधिकारियों पर फायर किया जिन्होंने उससे पहचान के दस्तावेज दिखाने को कहा था। पुलिस अधिकारी ने तत्काल जवाबी कार्रवाई की। संयोग से पुलिस अधिकारी इस घटना में घायल तो हुए लेकिन उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। इसके बाद पुलिस की टीम ने घटनास्थल पर हमलावर को मार दिया। गृहमंत्री माराको मिनित के शब्द। जर्मनी की केंद्रीय पुलिस ने अनीस आमरी की 2 तस्वीरें भी जारी की हैं। बताया जा रहा है कि मृतक के फिंगरप्रिंट्स भी अनीस आमरी से मेल खा रहे हैं। हमले में इस्तेमाल किए गए ट्रक पर पोलैंड की नंबर प्लेट थी और ट्रक के केबिन से संदिग्ध अनीस आमरी के फिंगरप्रिंट प्राप्त हुए थे। उधर जर्मनी के गृह मंत्रालय का कहना है कि वो इस बारे में आधिकारिक पुष्टि होने का इंतजार कर रहा है। जर्मनी के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता टोबियस प्लेट ने कहा,
Dem Verbindungsbeamten des Bundeskriminalamts in Rom ist von den italienischen Behörden mitgeteilt worden.
इटली के अधिकारियों ने रोम में जर्मन नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के अधिकारी को इस बारे में सूचना दी है कि मारा गया संदिग्ध बर्लिन हमले का दोषी था। हमारी सरकार की ओर से अभी इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं है। मैं अभी इस पर थोड़ा धैर्य रखने को कहूंगा। अगर यह सही साबित होता है तो गृह मंत्रालय को इस बात का संतोष होगा कि अब वो व्यक्ति खतरनाक साबित नहीं होगा। जर्मनी के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता के शब्द। इटली में मारे गए संदिग्ध अनीस आमरी की मां नूर अल हौदा हसानी का कहना है कि अगर उसके बेटे ने इस हमले को अंजाम दिया है तो उससे उनका कोई लेना देना नहीं है।
उसे मिलाकर मेरे 4 बेटे हैं और अब मैं उसकी गिनती नहीं करूंगी। ये खबर बेहद खराब है। हम सच्चाई जानना चाहते हैं कि क्या ये वही हैं जिसने इसे अंजाम दिया। मैं कभी नहीं कहूंगी कि वो मेरा बेटा है क्योंकि वो हमारे लिए और ट्यूनिशिया के लिए गद्दार है। हे भगवान, हमें सच बताएं, अगर वो हमलावर है तो उसे अपने कर्मों का दंड मिलना चाहिए।
संदिग्ध की मां के शब्द। जैसा कि आप जानते हैं कि जर्मनी की राजधानी बर्लिन के एक व्यस्त क्रिसमस बाजार में ट्रक से हमला किया गया था जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई थी और कुल 49 लोग घायल हुए थे।
बर्लिन क्रिसमस बाजार में ट्रक हमले के मुख्य संदिग्ध को इटली की पुलिस ने गोली मारी। और इस समय आपको बता दें कि जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रही हैं।
To achieve that, we need to work intensely, and that is something that you can rely on. Our democracy, our state of all rule of state of law, and our
Angela Merkel कह रही हैं कि हमारा देश मजबूत है और हम प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं। इसके अलावा शायद इस हमले के बारे में वो और जानकारियां संवाददाताओं को दे रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि संदिग्ध अनीस आमरी हैं कौन? पंकज प्रदर्शी से मैंने जाना चाहा।
देखिए, जिन्हें आपने मुख्य संदिग्ध कहा है उनका पूरा नाम पुलिस ने अनीस बिन मुस्तफा बिन उथमान आमरी बताया था, जो कल ही यानी 22 तारीख को 24 साल का हो गया था। उसका घर पूर्वी ट्यूनिशिया के शहर कैरवा से 80 किलोमीटर दूर था, जो पुलिस ने बताया है, जहां से वो 2011 में नाव पर बैठकर अवैध रूप से इटली चला गया था। इटली से वो जर्मनी पहुंचा जहां उसने इस साल अप्रैल में शरण लेने के लिए आवेदन किया था। इटली में अनीस आमरी एक स्कूल में आगजनी के अपराध में 4 साल जेल की सजा भी काट चुका था और ट्यूनिशिया में बिना उसकी मौजूदगी के उसे जेल की सजा भी सुनाई गई थी।
जो जर्मनी के न्यायिक सूत्र हैं उनके मुताबिक क्या कुछ कहा गया है?
जो जर्मनी के न्यायिक सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि बर्लिन में मार्च से सितंबर के बीच उसकी निगरानी रखी जा रही थी, पहले से ही उस पर नजर थी पुलिस की और सुरक्षा सेवाओं को शक था कि वो ऑटोमेटिक हथियार खरीदने के लिए लूट की योजना बना रहा था, यानी जिससे वो कोई हमला कर सकता था उन ऑटोमेटिक हथियारों से। जर्मनी के नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया राज्य के गृह मंत्री राल्फ जेगर ने बताया था कि अनीस आमरी पर एक हमले की तैयारी करने के संदेह में भी नजर रखी जा रही थी और उन्होंने बताया था कि आतंकवाद निरोधक अधिकारियों ने इस साल नवंबर तक उसके बारे में जानकारियां बांटी थीं और उसके बारे में संदेह था कि वो राज्य के खिलाफ एक गंभीर हिंसक कार्रवाई की तैयारी कर रहा था। यानी इससे अंदाजा यह भी लगता है कि पुलिस को शक था कि वो कोई बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं।
किसी का कोई प्रभाव या किसी से प्रभावित अनीस आमरी?
बिल्कुल, जर्मनी के एक अखबार ने दावा किया था कि वो एक इस्लामिक उपदेशक अहमद अब्दुल अजीज के संपर्क में आया था जिसे अबू वला भी कहा जाता है और जिसे नवंबर में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने एक नोटिस में लिखा है कि अनीस आमरी 6 अलग अलग नामों का भी इस्तेमाल करता था और उसने कई बार खुद को मिस्र या लेबनान का नागरिक बताने की भी कोशिश की थी।
इटली में अनीस आमरी को गोली मारी गई और ये अनीस आमरी जर्मन हमले के संदिग्ध थे, पंकज प्रदर्शी बता रहे थे। इस बीच लीबिया के एक यात्री विमान को हाईजैक करके माल्टा की राजधानी ले जाया गया है। हाईजैक विमान से कुछ यात्रियों को रिहा किया गया है जिसमें कि महिलाओं और बच्चों का एक ग्रुप शामिल है। लीबिया सरकार और अफ्रीकिया एयरवेज ने इस हाईजैक की आधिकारिक पुष्टि की है। मेरे साथ स्टूडियो में सुशील झा मौजूद हैं। सुशील, सबसे पहले ये बताइए कि क्या क्या अब तक हो चुका है और कैसे इस विमान को हाईजैक किया गया?
हुआ ये कि लीबिया जो कर्नल मुअम्मर गद्दाफी का देश है तो वहाँ से, वहाँ का एक शहर है सभा, तो सभा से एक विमान चला और उसे त्रिपोली आना था लेकिन वो रास्ते में ही वो डाइवर्ट कर लिया गया और वो उतरा कहाँ, माल्टा में। अब ये माल्टा एक ऐसी जगह है जो इटली और अफ्रीका के बीच में एक द्वीप जैसा एक देश है,
भूमध्य सागर
में। तो वहाँ पर इसको उतारा गया और उसके बाद काफ़ी समय तक पुलिस ने संपर्क करने की कोशिश की कि जो अपहरणकर्ता है, बताया गया कि भाई 2 अपहरणकर्ता हैं जिनके हाथ में हैंड ग्रेनेड है, कथित तौर पर किसी ने देखा नहीं था उनको। उसके करीब 1.5-2 घंटे के बाद धीरे धीरे जत्थों में पैसेंजर्स को रिहा किया गया। तो 111 पैसेंजर थे, तो अभी तक जो हमारे पास ताज़ा जानकारी उस हिसाब से 65 यात्रियों को छोड़ा जा चुका है। सारी जितनी भी महिलाएं थे 28 उनको छोड़ दिया गया, सारे बच्चे छोड़ दिए गए। अभी खबर आ रही है जब मैं आपके पास खबर पढ़ने के लिए आया था उस समय कि क्रू मेम्बर्स जो साथ उनको भी छोड़ा जा रहा है। लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि अगर सबको छोड़ा ही जाना था तो क्यों हाईजैक हुआ। तो एक सभा के मेयर का एक बयान आया है कि संभवतः वो माइग्रेटर्स हैं और वो माल्टा में शरण लेना चाहते हैं, लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं हो सकी। वो बार बार कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि एक है या दो है। तो ये अभी जिस तरह से होता है किसी भी अपहरण हाईजैक की घटना में कि अलग अलग सूचनाएँ आती हैं, सबकी पुष्टि करना बड़ा कष्ट मुश्किल होता है। तो अभी जो पुष्ट खबर ये है कि 65 यात्रियों को रिहा कर दिया गया है।
सुशील, हाईजैक करने वालों की कोई मांग का पता चला है?
नहीं, किसी मांग का कोई पता नहीं चला है अभी तक। अब पहले खबर ये थी कि 2 हाईजैकर्स हैं, अब आ रहा है कि साहब एक ही हाईजैकर है। और जो मैंने अभी आपको बताया कि जो मेयर है उन्होंने ये बात कही है, तो चूंकि वो सारे यात्रियों को छोड़ रहे हैं तो संभवतः ये पॉलिटिकल असाइलम की एक कारण ये हो सकता है, लेकिन इस पर पुष्टि से बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से ये बात कही नहीं जा सकती। अब धीरे धीरे घटनाक्रम बदलेगा तभी पता चलेगा कि क्यों हाईजैक किया गया था।
आपको बता दें, हम जो हमारे श्रोता हमें सुन रहे हैं, सुशील जी बहुत बहुत शुक्रिया। bbchindi.com पर इस घटना की ताज़ा तरीन जानकारी आप पढ़ सकते हैं। और अब कार्यक्रम में आपको बताते हैं कि कल बीबीसी इंडिया बोल में किस विषय पर होगी चर्चा।
बीबीसी इंडिया बोल।
विराट कोहली की अगुवाई वाली भारतीय टेस्ट टीम जीत के रथ पर सवार है। घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड के बाद टीम इंडिया इंग्लैंड को भी रौंद चुकी है। इसने साल 2016 में खेले गए 12 में से 9 मैच अपने नाम किए हैं और एक भी मैच गंवाया नहीं है। ये टीम रैंकिंग में नंबर 1 है। क्या मौजूदा भारतीय टीम सार्वकालिक सर्वश्रेष्ठ है? इस बार बीबीसी इंडिया बोल में चर्चा इसी विषय पर शनिवार 24 दिसंबर 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
भारतीय राजनीति में आज जब भी किसानों, पिछड़े, कारीगरों और गांव वालों की बात की जाती है तो इसका श्रेय सिर्फ एक ही शख्स को दिया जाता है। दिया जा सकता है। चौधरी चरण सिंह दो बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में गृह मंत्री, वित्त मंत्री और कुछ समय के लिए भारत के प्रधानमंत्री रहे चरण सिंह को आज भी सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के उच्चतम मूल्य स्थापित करने के लिए याद किया जाता है। उनकी 114वीं वर्षगांठ पर उनके जीवन के कुछ पहलुओं पर नजर दौड़ा रहे हैं रिहान फजल आज की विवेचना में।
जैसा गांधी जी कहते थे, मरते वक्त कहते रहे कि हिंदुस्तान गांव में रहता है, बम्बई, कलकत्ते, दिल्ली में नहीं रहता। लेकिन पावर आम तौर पर उन लोगों के हाथ में आई जो बम्बई, कलकत्ते, दिल्ली या आगरे में रहते थे। लेकिन अल्टीमेट पावर जो है नेहरू के हाथ में, इंदिरा के हाथ में, जिनको कोई हमदर्दी नहीं थी, सोशल रिलेशंस उनसे कुछ नहीं थे गांव के लोगों से।
ये आवाज है चौधरी चरण सिंह की, जो सिर्फ एक राजनीतिज्ञ, एक किसान नेता, एक पार्टी के अध्यक्ष और एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम ही नहीं था, चरण सिंह एक विचारधारा का भी नाम था। चरण सिंह की राजनीति में कोई दुराव, कोई कपट नहीं था, बल्कि जो उन्हें अच्छा लगा उसे उन्होंने ताल ठोक कर अच्छा कहा, और जो उन्हें बुरा लगा उसे कहने में उन्होंने कोई गुरेज भी नहीं किया। वरिष्ठ पत्रकार और इस समय राज्यसभा टेलीविजन में ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट के प्रमुख कुर्बान अली बताते हैं।
बहुत ही रौबीला व्यक्तित्व, उनके सामने आमतौर पर लोगों की बोलने की हिम्मत नहीं हो पाती थी, बहुत चेहरे पे पुख्तगी होती थी, बहुत ही संजीदा गुफ्तगु, बहुत रेयरली मुस्कुराते थे। अगर चौधरी साहब ने कहका लगाते हुए किसी ने उनको देखा हो तो मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत ही रेयर बात रही होगी। उसूलों के बहुत पाबंद और बहुत साफ़ सुथरी राजनीति करने वाले, जो उनके दिल में होता था, दिमाग में होता था, वो उनकी ज़बान पर होता था। और आर्य समाजी थे, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वो महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी का जो भट्टी थी उसमें तपे, और 1937 से लेकर के 77 तक वो विधायक रहे लगातार छपरौली बागपत एरिया से। इस सब के बावजूद के प्रधानमंत्री तक बने, कभी मैंने नहीं देखा कि किसी तरह का कोई लाव लश्कर उनके साथ हो। मामूली सी एम्बेसडर गाड़ी में चलते थे, बहुत ज़्यादा अगर लग्जरी का भी हुई तो एक कॉन्टेसा गाड़ी उस ज़माने में आती थी, उसका इस्तेमाल वो कर लेते थे यूपी वगैरह जाने के लिए। जहाज़ से चलने के बहुत ख़िलाफ़ थे, प्रधानमंत्री रहने के बावजूद वो लखनऊ ट्रेन से जाना पसंद करते थे, और अगर कोई बल्ब जला हुआ है दिन में तो बहुत डांटते थे कि इसको बंद करो। मैं कहूँगा कि चौधरी चरण सिंह भारतीय राजनीति का एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने न्यूनतम लिया, अधिकतम दिया और बहुत सादगी के साथ जीवन जिया।
चौधरी चरण सिंह से लोगों का रिश्ता दो तरह का हो सकता था, या तो आप उनसे नफरत कर सकते थे या असीम प्यार। बदले में आपको भी या तो बेहद गुस्सा मिलता था या अगाध स्नेह, कांच की तरह पारदर्शी और ठेठ देहाती बुजुर्गों जैसा। चौधरी चरण सिंह के नाती और चरण सिंह अभिलेखागार का काम देख रहे हर सिंह लोहाटी चरण सिंह की शख्सियत के कुछ दूसरे पहलुओं पर रोशनी डालते हैं।
कम लोगों को मालूम होगा कि संत कबीर के वो बड़े अनुयायी थे, और कबीर के दोहे कितने जानते थे, मैंने सुने हैं उनसे खुद, शाम को गाते थे। दूसरी बात ये थी कि सादगी का जीवन था, सादगी का ऐसा जीवन कि अगर आप उनके घर पहुंचे तो आपको लगे कि भाई इनके पास तो कुछ है ही नहीं, बैठने की जगह, सोने की जगह, खाने की जगह, जैसे बिल्कुल ही गरीब घर में हो। धोती और देसी लिबास और पुरानी एचएमटी घड़ी, और एचएमटी घड़ी उल्टी पहनते थे, ऐसे देखते थे, और वही घड़ी रही। वो 100% शाकाहारी थे, तंबाकू सिगरेट कोई सवाल नहीं। सबसे बड़ी बात ये, अगर वो जानते हो कि आप शराब से ताल्लुक रखते हैं तो आपकी और उनकी बात हो नहीं सकती थी। दिल्ली में रहते थे वो तुगलक रोड पर, हमारे पिता थे सरकारी मुलाजिम, दिल्ली का लोहिया अस्पताल है उसके वो मेडिकल सुपरिंटेंडेंट थे, तो हम लोग रहते थे लोधी एस्टेट में, तो 10 मिनट दूरी। तो हमारे माँ और हमारे पिताजी और कुछ लोग, डॉक्टर स्वरूप सिंह जो दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे किसी ज़माने में, एक श्री जगत नारायण, तो कई लोग थे ऐसे जो इनोसेंट कार्ड गेम जिसको बोलते हैं कोर्ट पीस, तो किसी ज़माने लोग बहुत खेलते थे। तो हर दिन शाम को जब चौधरी साहब फ्री होए या दिल्ली में हो तो बुला लिए जाते थे कि भाई 4-5 लोग बैठे शाम को, हमेशा घंटा डेढ़ घंटा हंसी मजाक, यही उनका टेंशन रिलीज का तरीका था।
लगातार 40 सालों तक कांग्रेस पार्टी का सदस्य रहने के बाद उन्होंने 1967 में पार्टी से इस्तीफा दिया, और एक साल बाद उन्होंने भारतीय क्रांति दल का गठन किया।
46 में वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हो गए जो मिनिस्टर का दर्जा होता था, और उसके बाद लगातार कैबिनेट मिनिस्टर रहे, वो चाहे गोविंद वल्लभ पंत की सरकार हो, संपूर्णानंद की हो, सीबी गुप्ता की हो, सुचेता कृपलानी मुख्यमंत्री हुई, तो उस वक्त उनको ये लगा कि शायद उनको कहीं पीछे छोड़ा जा रहा है। उसी वक्त गैर कांग्रेसवाद की राजनीति शुरू हुई, तो कांग्रेस ने सरकार बना ली सीबी गुप्ता साहब ने, तो उस वक्त में ये सोचा गया कि अगर कांग्रेस में कोई नेता टूट करके आ जाए 10-12 विधायकों के साथ, तो फिर ये सरकार गैर कांग्रेसी बनाई जा सकती है। जो उनकी पहली जो भाषण है 1 अप्रैल 1967 को, रोते हुए भाषण जार कतार कि कांग्रेस संस्कृति में पला बढ़ा, आज इसको छोड़ते हुए मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, दर्द है, लेकिन मेरी मजबूरी है। उसी वक्त फिर सीबी गुप्ता साहब ने राज्यपाल को जाकर अपना इस्तीफा दे दिया। फिर 3 अप्रैल 1900 2 दिन बाद चौधरी साहब की शपथ हुई और उनके नेतृत्व में ये पहली उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जो अद्भुत सरकार थी, जिसमें जनसंघ भी थी, सोशलिस्ट भी थी, प्रजा सोशलिस्ट भी थी, कम्युनिस्ट पार्टी भी थी, स्वतंत्र पार्टी भी थी और रिपब्लिकन पार्टी भी थी।
1977 में आपातकाल समाप्त होने के बाद जनता पार्टी के गठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। मैंने कुर्बान अली से पूछा कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि उनके समर्थन की वजह से ही जगजीवन राम की बजाय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसकी वजह यह थी कि उस वक्त चौधरी साहब भर्ती थे विलिंगडन हॉस्पिटल, जो अब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल, और सारे जनता पार्टी के जो सांसद थे जिन्हें अपने संसदीय दल का नेता चुनना था, वो गांधी पीस फाउंडेशन में जेपी ने बुलाया और वहाँ पे ये तय होना था, पर्चियाँ डाली जाने वाली थी, बल्कि प्रभाष जोशी ने मुझे बताया कि वो उन्होंने पर्ची बनाई और वो बैठे हुए थे इस इंतज़ार में, लेकिन वो पर्चियाँ धरी रह गई। उस वक्त में एक खेल खेला गया और उसमें राजनयन का इस्तेमाल किया गया, जो उस वक्त बहुत ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट थे चौधरी साहब के, और ये कहा गया कि देखिए जगजीवन राम प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, अगर आप मोरारजी को नहीं मानते हैं तो फिर जगजीवन राम बन जाएंगे। तो उस वक्त में कई लोगों का कहना है कि बाद में चौधरी साहब ने अपनी इस भूल को माना और ख़ुद एक मरतबा जगजीवन राम से माफ़ी मांगी कि भाई माफ़ करना, मेरी वजह से आप प्रधानमंत्री नहीं हो पाए।
लेकिन इन्हीं चरण सिंह की जनता पार्टी सरकार को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेकिन उस समय चरण सिंह के नज़दीकी रहे और इस समय जनता दल यू के महासचिव केसी त्यागी मानते हैं कि चरण सिंह के सामने ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर दी गईं कि उनके सामने पार्टी तोड़ने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं रहा।
जो लोग पार्टी बनाए जाने के खिलाफ थे वो पार्टी के मालिक बन गए। चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में 100 से ज्यादा एमपी आए थे और 2 बड़े मंत्रालय देकर के लोक दल का जो फैक्शन था उसको सेटिस्फाई करने का प्रयास किया गया। मुरारजी भाई जिनके 20-22 एमपी मुश्किल से थे, उनके 7 कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए और पहले दिन से ही जो उस समय की जो जनसंघ थी वो चंद्रशेखर जी के नेतृत्व का धड़ा, मुरारजी भाई के नेतृत्व का धड़ा चौधरी चरण सिंह को दिन पर दिन कमजोर करने के लिए चलता रहा। और एक स्टेज ऐसी आ गई कि हमारे लिए जनता पार्टी में रहना गुलामी जैसा हो गया, हमारे सामने उस पार्टी से अलग होने के अलावा कोई रास्ता नहीं।
चरण सिंह के उस फैसले पर कई सवाल उठाए गए जब उन्होंने गृह मंत्री के तौर पर इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने के आदेश दिए और अगले ही दिन मजिस्ट्रेट ने उन्हें रिहा कर दिया।
ये तो देखिए उनका बायस पहले दिन से था। उनका ये मानना था कि जिस तरह से इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में 1,00,000 लोगों को बंद कर दिया था, उन सबको फर्जी मुकदमे लगाए गए थे इन लोगों के ऊपर, तो उसी तरह से इंदिरा गांधी को, बल्कि इतनी सख्त बात एक बार तो चौधरी साहब ने कही कि मैं तो चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी को कनॉट प्लेस में खड़े होकर के कोड़े लगवाए जाए। उनसे लोग समझाते भी थे कि भाई लोकतंत्र में सबसे बड़ी सज़ा जनता देती है कि किसी आदमी को चुनती है, किसी को रिजेक्ट करती है, तो जनता ने अपना फैसला सुना दिया, अब आप ये मत कीजिए, इससे इंदिरा गांधी को पॉलिटिकली माइलेज मिलेगा, उन्हें लाभ मिलेगा। और इस बार में मोरारजी देसाई भी उनके साथ थे और दोनों ने मिलकर के फैसला किया कि शाह कमीशन बना और शाह कमीशन में रोज़ गवाहियाँ होती थी, रोज़ उसमें बयानात होते थे, कई महीने उसकी कार्रवाई चली। चौधरी साहब ने आखिरकार इंदिरा जी को गिरफ्तार करवा के जेल भेज ही दिया। तो ये ब्लंडर तो था ही, मतलब उनके अंदर एक आप कह सकते बदले की भावना भी थी कि इंदिरा गांधी ने उनके साथ जो बर्ताव किया उसका बदला उनसे लिया जाए, और वो ये मानते थे कि इनको तो और भी सख्त से सख्त सजाएं दी जाए।
चरण सिंह की उस समय भी बहुत किरकिरी हुई जब उन्होंने जनता पार्टी टूटने के बाद सरकार बनाने के लिए कांग्रेस का सहारा लिया और जिसने कुछ दिनों बाद ही उनकी सरकार से समर्थन वापस ले लिया।
जी वो तो बहुत ही बचपना था, और उसके बाद भी ये था कि देखिए उस वक्त संजय गांधी सक्रिय थे और वो पूरी तरह से जनता पार्टी को तोड़ना उनका मकसद था। राजनयन तो पहले ही निकाल दिए गए थे, चौधरी साहब वापस ले लिए गए, लेकिन जब राजनयन को वापस लेने की बात आई तो मुरारजी ने कहा कि मैं राजनयन को हरगिज नहीं लूँगा, तो उनकी जगह रवि राय जी को लिया गया और हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया। तो राजनयन जी आप जानते हैं कि बहुत ही विध्वंसक राजनीति करते थे वो। जब ये लगने लगा कि अब जनता पार्टी में झगड़े बहुत बढ़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, रोज अनुशासनहीनता हो रही है, चौधरी साहब हमेशा बहुत कहना चाहिए डरते भी थे और आखिरी वक्त तक वो अपने आप को चीज़ों से अलग रखते थे। जब उनको लगता था कि मामला बिल्कुल पक गया है तभी जनता पार्टी से इस्तीफा देने वाले वो आखिरी व्यक्ति थे। जब तक उनके साथ 82 एमपी नहीं इकट्ठा हो गए उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, और जब दे दिया तो उनको उस वक्त में ये हुआ कि साहब हालांकि कांग्रेस भी उस वक्त दो भागों में थी, एक वाई बी चौहान वाली कांग्रेस थी, एक इंदिरा गांधी वाली, तो दोनों ने समर्थन करने की बात कर दी, लेकिन उसको बहुत ही गलत ढंग से, मैं कहूँगा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया चौधरी साहब ने। इंदिरा गांधी अपने 12 वेलिंगटन क्रिसेंट के निवास पर बैठी हुई थी कि चौधरी साहब ओथ लेने के बाद उनके पास आएंगे, फूलों का गुलदस्ता और वो सब उन्होंने लेके रख रखा था, उसके गवाह भीष नारायण सिंह अभी मौजूद हैं। लेकिन चौधरी साहब जब आ रहे थे तो कहा यह जाता है कि उनके एक दामाद थे, उन्होंने कहा चौधरी साहब आपको इंदिरा गांधी के पास जाने की क्या ज़रूरत है, इंदिरा गांधी आपके पास आएंगी, और वहीं उसी दिन सरकार गिरने का फैसला इंदिरा गांधी ने ले लिया। और ये भी भारतीय इतिहास में दर्ज होगा कि चौधरी साहब अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए संसद फेस नहीं की, सदन में नहीं गए, और फिर कुछ ही दिन में लोकसभा भंग हो गई, छठी लोकसभा, और चुनावों की घोषणा हो गई।
लेकिन इस सब के बावजूद चौधरी चरण सिंह ने सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के जो प्रतिमान स्थापित किए उनकी आज के युग में कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनके नाती हर सिंह लाहौटी एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं।
एक कहानी हमारे मौसा जी की है, वासुदेव सिंह है, यूएस में रहते हैं, वो दिल्ली में काम करते थे, तो उस जमाने में आपको शायद याद हो कि सब कुछ कोटे से मिलता था, तो उनको स्कूटर चाहिए था, एक स्कूटर बुक किया। उनको मालूम पड़ा कि मुख्यमंत्री का कोई कोटा होता है यूपी का, कि आप बजाज से इतना इतने स्कूटर 10-15-20 जो भी है आप ले सकते हैं। तो वासुदेव सिंह जी ने चौधरी साहब के जो ऑफिस था उनके पीए से बात करके, और पीए को क्या मालूम है चौधरी साहब के दामाद हैं, उनको स्कूटर बुक करना है कोई बड़ी बात है नहीं, मिनिस्टर का कोटा है चीफ मिनिस्टर का, तो बुक हो गई। समय आया कि उनको स्कूटर की डिलीवरी लेनी हो, तो वो पहुंचे लखनऊ, तो हम गए सर्किट हाउस में, तो काम ख़त्म हुआ, तो उन्होंने पूछा अरे हाँ वासुदेव, मैंने पूछा नहीं, मैं भूल गया, तुम आए कैसे यहाँ पे? इसे पिताजी वो स्कूटर लेने आया था। इसे कैसा स्कूटर? इसे जी वो स्कूटर मिलता नहीं है तो उत्तर प्रदेश के मुख्य, तो चौधरी साहब समझा अच्छा 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 अच्छा, कुछ नहीं कहा उन्हें। पीए साहब को बुलाया गया कि इनको आपने कोटे में स्कूटर कैसे दिलाया, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले तो है नहीं, ये तो दिल्ली के रहने वाले, तो आप ऐसा करिए कि ये जो बुकिंग है कैंसिल करिए और इनका पैसा वापस दिलाइए। तो श्रीमान वासुदेव सिंह हमारे मौसा जी, पूज्य मौसा जी कहते हैं कि भैया वो मुझे जो लखनऊ आया उनके साथ बैठा, मैं 2-3 घंटे बड़ा महंगा पड़ा।
चरण सिंह इसलिए नहीं याद किए जाएंगे कि वो उत्तर प्रदेश, हरियाणा या राजस्थान में अपने बूते पर विधायक चुनवा सकते थे, या वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या भारत सरकार के गृह मंत्री थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने समाज के उस वर्ग को आवाज दी जो शोषित था, जिसकी कोई लॉबी नहीं थी। हालांकि इसकी कीमत उन्हें शहरी तबके के भारी विरोध और असहयोग से चुकानी पड़ी। अपनी समस्त भूलों के बावजूद चरण सिंह भारतीय राजनीति के असली चौधरी थे। रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
चौधरी चरण सिंह। और अब कार्यक्रम में इससे पहले कि आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। हाईजैक करके माल्टा ले जाए गए इस लीबिया के एक विमान में सवार रहे लगभग सभी लोगों को छोड़ दिया गया है। जर्मनी के बर्लिन में हुए लॉरी हमले के मुख्य संदिग्ध अनीस आमरी को इटली पुलिस ने मुठभेड़ में गोली मार दी और उनकी मौत हो गई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि सीरिया को लेकर शांति वार्ता अगले साल होगी। इसमें सीरिया के राष्ट्रपति के अलावा ईरान, तुर्की और रूस भी हिस्सा लेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है उन्हें अमरीका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान में कोई अनोखी बात नहीं दिखती है जिसमें ट्रंप ने कहा था कि वो अमरीकी परमाणु ताकत में इजाफा करना चाहते हैं। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान। सुबह 6:30 बजे पहली सभा नमस्कार भारत लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। मोहनलाल शर्मा को विदा दें, नमस्कार।